నమో రిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆర్యాణం, నమో వజ్రాణం, నమో లోయే త్రికాళవర్తి సవసాహం. మంగళం భగవాన్ వీరు, మంగళం గౌతముడు, మంగళం కుండకుండాలు, జయమూర్తి మంగళం. సర్వ మంగళ్య మంగళ్యం, సర్వ కళ్యాణ కారకం, ప్రధానం సర్వధర్మానం, జయనం చేతు సాధనం. ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యానతి యోగనం, కామదం మోక్షదం చేయ ఓంకారాన్ని నమో నమస్కారాయ స్వానుభూతి చకాస్తి శిష్టభావాయ భావాయ సర్వభావం దక్షి అజ్ఞానం జ్ఞానార్జన కళాశయ చక్షురుతమేనం సత్య శ్రీ గురువే నమ. ఆత్మజ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాత్మీయ కరోతికి పరభావస్య కర్తాత్మ మోహోయం వ్యవహారి. మంగళమయ మంగళకరణ వీకరణ విజ్ఞానం నమోకాది జాతే భయ హరిహంతాది. ఓం నమస్తు దేవి, నమస్తు దేవి, నమస్తు. మహావీర పరమాత్మ కుంకుల ఆచార్య అమరచంద్ర ఆచార్య దేవుకి పరంపర గురుదేవ శ్రీకే సాన్నిధ్యమైన ఆఫర్ జగత్ భవ్యకి ప్రదర్శన భూతకత్వ చైతన్య ధ్రువుకి ధూమ్ లగాకర్ ఏకాగ్ర హోకర్ అనుభూతి కనే కా ప్రయత్న కర్తే హి. ఇస్కా విధాన క్యా హై ఔర్ కిస్ తరహ సే ఆత్మా కీ అనుభూతి హోతీ హై, ఇస్ శృంఖలా మే పూజ్య బాబూ జీ కా యే మంగళమయ లేఖ इस बात को स्पष्ट करता है कि श्रद्धा का विषय समय के एकांत होता है. और विषय को निरपेक्ष, निर्भेद, निर्विचल, शुद्ध ज्ञाय, पर्याय निरपेक्ष, अखंड जीव तत्व है. बात समझ में आती है तो साथ में यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि जीव पदार्थ इतना ही तो नहीं है, वह तो एक ही समझ में द्रव्य गुण पर्यायात्मक है. सब पदार्थ के केवल द्रव्य पक्ष को स्वीकार करने वाली दृष्टि एकांतिक हुई और पर्याय की उपेक्षा कर देने पर जीव पदार्थ अखंड भी कैसे रहा. यह प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर बाबूजी इस तरह से दे रहे कि यद्यपि द्रव्य गुण पर्याय मय का प्रत्येक पदार्थ की अखंडता है और कोई पदार्थ कभी द्रव्य गुण अथवा पर्याय से रिक्त उपलब्ध नहीं होगा, किंतु द्रव्य गुण पर्याय अखंडता समय दर्शन का विषय नहीं है, यह प्रमाण का विषय है. प्रश्न बारीक है और इसके अंदर में बात उठाई गई कि यदि अपन पर्याय से रही द्रव्य को दृष्टि का विषय कहेंगे तो वस्तु तो द्रव्य को पर्यायात्मक है, और यदि पदार्थ केवल द्रव्य पक्ष का स्वीकार करे तो दृष्टि एकांतिक हुई और पर्याय की उपेक्षा कर देने पर जीव पदार्थ अखंड भी कैसे रहेगा. ये प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ये बात सही है कि जगत में कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय से रिक्त उपलब्ध नहीं होता, किंतु द्रव्य गुण पर्याय अखंडता सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, यह प्रमाण का विषय है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की भिन्नता का माध्यम यदि समझाना हो तो बात बताई जाती है कि गुण पर्याय बंद कर लें क्या उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत्य द्रव्य गुण पर्याय को लेकर सारी वस्तुएं बात बताई जाती है। बड़े बात सही है और लेकिन यह प्रमाण का विषय है। अनंत गुणात्मक अन्वय स्वरूप द्रव्य की जो शाश्वत एक रूपता है, अनंत गुणात्मक अन्वय स्वरूप द्रव्य की जो शाश्वत एक रूपता है वही सम्यक दर्शन विषय अखंडता है। पर्याय के व्यतिरोकों की अपेक्षा तो द्रव्य में नानत्व का प्रतिभास होता है और वह नानत्व ही खंड भाव है। पर्याय के व्यतिरोकों की अपेक्षा द्रव्य में नानत्व माने अनेकपना का प्रतिभास होता है और ये जो अनेकपना है वही खंड भाव है जो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन का विषय पर्याय नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय है और पर्याय का विषय जब द्रव्य बनता है तब पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। अब यह पर्याय यदि द्रव्य के साथ में दृष्टि के विषय में मिला दी जाए तो विषय कौन करेगा? यदि विषय करने वाली पर्याय द्रव्य के साथ मिला दी जाए तो विषय करने वाला क्यों नहीं रहा? तो यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन का जो विषय है वो अखंड अनंत गुणात्मक अन्वय स्वरूप द्रव्य जो है जो शाश्वत एक रूप है, शाश्वत त्रिकाल एक रूप, सदा ही एक रूप, अनादि अनंत एक रूप, द्रव्य अनेक रूप नहीं होता। अनंत गुण द्रव्य में होने के बावजूद भी ये वस्तु एक रूप होती है और जब वस्तु एक रूप होती है तो एक रूप दृष्टि का विषय बनती है यानी पर्याय का विषय बनती है और पर्याय उसमें अपनापन किस तरह से करती है? पर्याय अपनापन नहीं कहती, पर्याय कहते मैं धूम। पर्याय का शरीर ध्रुव से बनता है, ध्रुव से निर्मित होता है। उस पर्याय के अंदर में पर्याय नहीं बनती, उस पर्याय के अंदर में मात्र मात्र और मात्र ध्रुव बनता है। और इस बात को बाबूजी इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि पर्याय के व्यतिरेकों में द्रव्य वैसा का वैसा भले ही दृष्टिगोचर हो किंतु वही का वही कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पर्याय तो पलटती है। द्रव्य तो यूं का ही रहता है लेकिन जब पर्याय पलटती है तो हर मशीन नई पर्याय के अंदर में नवीन पर्याय के अंदर में नवीन अनुभव, वो का वही आत्मा रहता है, आत्मा वो का वही है लेकिन पर्याय देखती वही नहीं रहती। अतः पर्याय की आश्रय कार्य पर्याय को कभी विराम नहीं मिलता। यदि पर्याय आश्रय करे पर्याय का तो उस पर्याय को कभी भी विराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी पर्याय के साथ चक्कर खाती रहती है। पर्याय स्वयं चक्कर खाती है, चक्कर खाती है, पलटती है, बदलती है, कभी पर्याय पर्याय का आश्रय करे तो उसको विराम नहीं मिल सकता लेकिन द्रव्य के आश्रय कारण पर्याय को अनंत विराम होता है। लेकिन जहाँ पर्याय ने द्रव्य के अंदर में आश्रय लिया तो उसको अनंत विराम यानी कि सदा के लिए विश्राम मिल जाता। स्वयं सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन का आश्रय नहीं है। अब सम्यक दर्शन को जब सम्यक दर्शन का आश्रय नहीं है तो जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसको क्या होना चाहिए? उसकी दृष्टि के अंदर में सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन की दृष्टि में सम्यक दर्शन रहेगा यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना ऐसा भी रहेगा यानी कि सम्यक दर्शन से मुक्त मार्ग में चलकर परिपूर्णता को प्राप्त करना है मोक्ष का प्राप्त करनी ऐसा भी रहेगा, तब तक पर्याय के अंदर में पर्याय ने पर्याय का आश्रय लिया, वो पर्याय को कभी भी विश्राम विराम आराम नहीं मिल सकता। और अनादि काल से जीव ने यही प्रयत्न किया, जिसके वजह से वो संसार के अंदर में चक्कर खाते रही, गोता खाते रही, विराम स्थान उसको नहीं मिला। सच्चाई तो यह है कि पूरे जीव पदार्थ में से समय दर्शन उतनी ही सीखने का है जितनी उसके प्रयोजन की है, और वो प्रयोजन भूत चीज अखंड व्याय जीवत्व ही है। प्रयोजन भूत क्या है? समय दर्शन को प्रयोजन भूत वस्तु चाहिए, और प्रयोजन भूत क्या है? अखंड व्याय, वो एकमात्र उनका प्रयोजन अखंड क्या है, परिपूर्ण न्याय, परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, बस वो उसका प्रयोजन है और उसी को लेता है। फिर बाबूजी दृष्टांत देते हैं कि आरोग्य मानव स्वभाव होते हुए भी एक व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है, यद्यपि आरोग्य और रुग्णत्व तो दोनों ही एक ही व्यक्ति के धर्म होने पर भी स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए आरोग्य स्वभाव ही उपाधि तथा श्रद्धे होता है। रोग तो जानने मात्र के प्रयोजन की होती है, उससे अन्य किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, जबकि आरोग्य स्वभाव तो प्रयोजन भूत मूल तत्व है, वह तो श्रद्धा ज्ञान और आचरण के योग्य है, जबकि रोग जो है वो श्रद्धा और आचरण का विषय बनने योग्य नहीं है। एक जानने योग्य तो है, लेकिन श्रद्धा और आचरण करने योग्य नहीं है। यदि वह श्रद्धेय हो तो उसका अभाव कैसे किया जाए, क्योंकि श्रद्धेय का अर्थ ही उपाधि होता है। इसी प्रकार आत्मा की सभी विकारी निर्विकारी क्रियाए समान रूप से कणित तथा आश्रय दातृत्व से शून्य होने के कारण मात्र ये ही होती है, चाहे विकारी क्रियाए हो चाहे निर्विकारी क्रियाए हो, वो समान रूप से कणित एक समय टिकने वाली, मोक्ष की पर्याय भी एक समय टिकने वाली, मैंने संसार व अनादि काम और मोक्ष शादी आनंद, लेकिन क्षणिक 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 क्षणिक, और इसका आश्रय दात्रु से शून्य होने के कारण आश्रय दाता नहीं हो सकती है पर्याय, क्योंकि स्वयं परिणाम की है, स्वयं पलटती है, स्वयं चलती है, स्वयं बदलती है, तो आश्रय दाता नहीं हो सकती, उससे शून्य होने के कारण मात्र ये ही होती है, उपाधि नहीं होती, अतः वह समय दर्शन का विषय नहीं होती, मिथ्या दर्शन का विषय होती है। ये बात भली भांति अपन समझ लें कि पर्याय का महात्म जहाँ आया वहाँ मिथ्या दर्शन की गंगा बहती रहेगी। अनादि काल से जीव ने समय दर्शन के लिए कम प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फिर भी समय दर्शन नहीं हुआ, उसका कारण यदि देखा जाए तो पर्याय का एकत्व ही उनका कारण रहा। उसमें जिनेन्द्र भगवान की ओम ध्वनि सुनकर भी मोक्ष की चाहती चाहना रही तो मोक्ष की रही, लेकिन जब तक मोक्ष की चाह रहती है तब तक परिग्रह बना रहता है, और ये इच्छा और परिग्रह, मोक्ष की इच्छा और परिग्रह भी संसार का मूल कारण होने के वजह से ये मिथ्या दर्शन ही कहलाता। उन्होंने अनादि काल से विकारी पर्याय का अभाव करना चाहा और निर्विकारी पर्याय को प्रकट करना चाहा, लेकिन उसका विधान जो है एक चैतन्य ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ, ऐसा आश्रय के बिना, ऐसा अवलंबन के बिना, ऐसा अहम के बिना, ऐसा एकत्व के बिना सम्यक दर्शन का जन्म नहीं हो सकता, ये बात उसको भली भांति समझ में नहीं आई। बुद्धिपूर्वक यदि आ भी गई और मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा चिंतन भी अविराम चला, तो भी उसका हेतु और अभिप्राय यह रहा कि सम्यक दर्शन का जन्म हो। जहाँ अभिप्राय के अंदर में सम्यक दर्शन की इच्छा और भावना रहती है, अभिप्राय के अंदर में पर्याय को प्रकट करने का महत्व रहता है, ये महत्व भी मिथ्या दर्शन का मूल कारण है। तो त्रैकालिक शुद्ध अखंड जीवत्व को विषय करने के कारण सम्यक श्रद्धा को एकांत का रूप आता हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रथम तो पूरे जीव पदार्थ में से जितना अपेक्षित होता है सम्यक दर्शन ले लेता है, अर्थात अहम करता है, और शेष अंश पदार्थ में विद्यमान रहते हुए भी उसे छोड़ देता है, और सरिता से जब उसे प्रयोजन ही नहीं है तो उसे लेकर भी क्या करेगा। जब उसे प्रयोजन ही नहीं है जो सही की पर्याय है उससे उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है तो उसको लेकर भी क्या करेगा। ज्ञान में ध्रुव द्रव्य के अहम के साथ पर्याय की विद्यमानता स्वीकृत होने के कारण ज्ञान में अनेकांत एवं श्रद्धा में समय एकांत निर्विवाद विद्यमान रहता है। कि ज्ञान का अनेकांतिक स्वभाव होने के कारण पर्याय की विद्यमानता स्वीकृत है, ध्रुव द्रव्य के अहम के साथ पर्याय की विद्यमानता स्वीकृत होने के कारण मानव द्रव्य में अहम भी करती है और पर्याय का विद्यमानता ज्ञान स्वीकार भी करता है कि पर्याय का अस्तित्व है पर्याय के अंदर में, इसकी विद्यमानता स्वीकृत होने के कारण ज्ञान में अनेकांत एवं श्रद्धा में समय एकांत निर्विवाद विद्यमान रहता है। बिना दो विवाद के एक साथ दोनों रह सकते हैं, जबकि ये बात सत्य होने के साथ ही एक बात और भी है कि जब अनुभूति होती है उसके पहले श्रद्धा के अंदर में समय एकांत और ज्ञान के अंदर में अनेकांत ऐसा भी नहीं होता। श्रद्धा के अंदर में एकांत और ज्ञान के अंदर में भी शुद्ध नहीं का विषय परम प्राणिक भाव मात्र वस्तु वो एकांत ही ज्ञायक ज्ञान के अंदर में बसता है। ज्ञान में भी एकांत हो और श्रद्धा में भी एकांत हो तब दोनों साथ चल के सुधात्मा की अनुभूति करते हुए ज्ञान दर्शन सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं। वास्तव में एकांत अनेकांत श्रद्धा के धर्म नहीं है वरन ज्ञान के धर्म है। अनेकांतमक वस्तु में तो द्रव्य पर्याय ध्रुव शरीर निर्विकार विकास आदि परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म एक ही साथ पड़े हैं, किंतु सबको समान रूप से उपाधि मानकर आश्रय करना श्रद्धा के लिए संभव ही नहीं है। ये सारे के सारे धर्म एक साथ वस्तु में पड़े हुए हैं, लेकिन समान रूप से आश्रय करना पर्याय के लिए संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है कि एक समय में एक का ही आश्रय करे, चाहे तो ध्रुव का करे चाहे तो पर्याय का करे। पर्याय का करे उसका नाम मिथ्या दर्शन और ध्रुव का करे उसका नाम समय दर्शन। अब इतना सरल विधान अपने सामने है, मार्ग अत्यंत स्पष्ट है, कहीं किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है, ज्ञानियों ने कोई अवकाश नहीं रखा कि आप किंतु परंतु करके कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं, नहीं हो सकता। अभी आपका झुकाव चाहे तो द्रव्य की तरफ हो चाहे तो पर्याय की तरफ, लेकिन उस श्रद्धा के झुकाव का स्वरूप यह है कि मैं हूँ। वो जब पर्याय में भी अहम करती है तो यह नहीं कहती कि ये मेरी पर्याय है, यह मैं हूँ करके वो अहम करती है, और द्रव्य में जब अहम करती है तो मैं हूँ उस रूप से ही अहम करती है। मन पर्याय के लोक में श्रद्धा की पर्याय के लोक में पर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, उसमें जो कुछ भी होता है वो स्व होता है, जो कुछ भी होता है वो मैं होता है, और मैं के अंदर में अन्य किसी का अवकाश नहीं होने से उसके अंदर में कभी रूपता नहीं होती, बहु रूपता नहीं होती, तो उसका आश्रय करने का जो स्वभाव है वो एक को अपने पने मैं पने अहम पने अपना आत्मा ही जाने, जब शरीर में भी अपनापन हो करती है तो वो आत्मा समझ के अपनापन करती है और ये उनकी भ्रांति है और इस भ्रांति को मिथ्या दर्शन कहते हैं। जब ये कहते हैं कि मैं शरीर हूँ तो शरीर रूप होता नहीं है, न पर्याय शरीर रूप होती है न शरीर पर्याय रूप आत्मा रूप होती है, लेकिन बस ये जो भ्रांति है उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। इसी को पर्याय का एकत्व कहते हैं, इसी को पर्याय बुद्धि कहते हैं। और जब द्रव्य में अहम हो, द्रव्य में एकत्व हो, तो मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस तरह से उसमें अहम करती है। निर्विकार द्वितीय तथा सविकार द्वितीय अथवा द्रव्य और पर्याय को समान रूप से उपाधि मानकर एक ही समय में उनका आश्रय किया जा सकता है, ऐसा नहीं बनता। निर्विकार नित्य तथा स्वीकार अनित्य अथवा द्रव्य और पर्याय को समान रूप से उपाधि मानकर एक ही समय में उनका आश्रय यानी कि अहम किया जा सके, ऐसा नहीं बनता। चाहे वो द्रव्य में अहम करे, चाहे वो पर्याय में अहम करे। पर्याय में अहम उसका नाम नित्य दर्शन, द्रव्य में अहम उसका नाम सम्यक दर्शन। दो पक्षों में एक समय में एक का ही आलम्बन संभव है, अतः सम्यक दृष्टि नित्य शुद्ध द्रव्य का ही आलम्बन करता है, क्षणिक पर्याय का नहीं। अनेकान स्वाभाविक वस्तु के दोनों पक्षों को एक ही साथ हेय उपाधि रूप से विषय करना ज्ञान का कार्य है और उस ज्ञान को ही प्रमाण अथवा अनेकांश कहते हैं। श्रद्धा यदि दोनों पक्षों को समान रूप में विषय करे अर्थात उपाधि माने तो वो मिथ्या है। श्रद्धा दोनों को उपाधि माने तो वो मिथ्या है, और ज्ञान यदि दोनों पक्षों को एक समय में समान रूप से विषय न करे अथवा सापेक्षता से, सापेक्षता से माने नहीं से एक ही पक्ष को एक समय में विषय न करे तो वह ज्ञान मिथ्या। बात बहुत सरल है, अपन को इस वस्तु को थोड़ा सा शांति से धीरे से चिंतन करे तो श्रद्धा का जो स्वरूप जो है, उसकी जो कार्य प्रणाली जो है, उसके अंदर में दूसरे को रहने की कोई जगह नहीं है। उसका कार्य है अहम समर्पित करना, और जिसको भी अहम समर्पित करता है वो सर्वज्ञता पूर्वक करता है। जब पर में करता है तो सब प्रतिशत मिथ्या दर्शन होता है। पर यानी पर्याय मैंने पर पदार्थ की चर्चा है ही नहीं, पर माने पर्याय और स्व माने शुद्धात्मा। जब मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विश्वास करती है तो उनका लोक यानी कि पर्याय का लोक, पर्याय की दुनिया शुद्धात्मा ही होता है। और जब परिणाम के अंदर में एकत्व करती है आश्रम को टालने का, सुमर को प्रकट करने का अभिप्राय जब वो बनाती है तो उसके अंदर में भी मैं अभी राजी हूँ और हमें मुक्त मार्गी होना है, इसी राह पर वो चलती है। राजी हूँ तो अपने आप को पूरा पूरा राजी मानती है और मुक्त मार्ग पे चलने के लिए मुक्त की जो चाहना जो है वो आसानी से ऊपर खले करती है। उसके अंदर में भी उसकी भावना शुद्धता प्रकट हो गई है, लेकिन अभिप्राय पर्याय दृष्टि का होने की वजह से और द्रव्य में अहम नहीं होने की वजह से अनंत बार द्रव्यलिंग गुणी होकर भी नौमी द्रव्य में अनंत बार गया था, वो ऐसे ऐसे नहीं गया। उसने भगवान के कहे अनुसार बाह्य चरित्र का पालन किया, तत्वों को समझा, उसके ऊपर चिंतन मनन किया, लेकिन द्रव्य में अहम नहीं किया। मैं परमात्मा सुगंधी साहब को एक बार बार पूछा गया कि द्रव्य लिंगी की भूल क्या है, तो कि द्रव्य में अपनापन नहीं किया वही मात्र भूल है। बस इतनी सी भूल, द्रव्य में अपनापन नहीं किया। अनेकान दृष्टि अर्थात प्रमाण दृष्टि में द्रव्य को पर्यायात्मक पदार्थ का अखंड भाव से स्वीकार हो चुकने पर ही उसके किसी एक धर्म को विषय करने वाले ज्ञान की सम्यक संज्ञा नहीं होती है। किंतु अनेकान दृष्टि में पदार्थ को संपूर्णता से द्रव्य पर्याय स्वरूप जान लेने पर भी सम्यक अनेकान ज्ञान के विषय भूत इस संपूर्ण पदार्थ कोई उपाधि नहीं मानता, वरन उसके नित्य शुद्ध पक्ष को ही अंगीकार करता है। इनका स्वभाव है। इस प्रकार प्रमेय दर्शन आत्मा के जिस स्वभाव को विषय करता है, ज्ञान चरित्र आदि अनंत लक्षिया भी उसी स्वभाव का अनुसरण करती है। श्रद्धा जिसको विषय करती है, ज्ञान चरित्र आदि भी उसी स्वभाव का अनुसरण करती है, और अंत में मुक्त दशा में भी उसी स्वभाव का अहम, उसी स्वभाव का संवेदन एवं उसी स्वभाव के लिंगता पूर्वक पूर्ण शुद्धता अभिव्यक्त होती है। उसी स्वभाव का हम माने श्रद्धा, संवेदन माने ज्ञान और लिंगता माने आचरण चारित्र पूर्वक पूर्ण शुद्धता अभिव्यक्त माने व्यक्त होती है। सम्यक दर्शन और उनके विषय का प्रथम लेख समाप्त हुआ। सम्यक दर्शन का विषय का एक दूसरा लेख जो पूज्य बाबू जी ने पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आगम पथ में सबसे प्रथम बार छपा था, और ये लेख जब आगम पथ में छपकर संगत गुरुदेव श्री पधारे तब खेमचंद भाई ने गुरुदेव से सब विद्वानों बैठे थे सामने, तब गुरुदेव के पास में एक पढ़ के सुनाया था, और गुरुदेव से अत्यंत प्रसन्न हुए के बराबर छे, आवूज वस्तु नु स्वरूप छे अने आत्मधर्म मा छापू जोईए, और फिर आत्मधर्म में भी लेख छपा था। अब इसके अंदर में भी सीधी बात सम्यक दर्शन का विषय के हेडिंग के साथ ही लेख की शुरुआत होती है, और उसमें बाबूजी ये कहते हैं कि अहम मय ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय तो होता है, लेकिन अहम मय ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता, क्योंकि अहम पर्याय का स्वभाव है, और जो पर्याय ध्रुव में अहम करती है उस अहम को ध्रुव में कोई जगह नहीं होती। ध्रुव तो ध्रुव है, अब ध्रुव तो पूर्ण है, अब पूर्ण में अहम को जगह मिले ये कैसे बन सकता है? सुनिए थोड़ा बाबू जी क्या कहते हैं, थोड़ा शांति से धीरज से। अपन ये विषय अपने सामने अनाधिकार से नहीं आया, ऐसा नहीं है, लेकिन शांति से इसके ऊपर में अपन चिंतन विचार नहीं करता, और जब बात पूर्णतया समझ में नहीं आती तो अनुभव की हड़बड़ी में सम्यक दर्शन की उतावल में मार्ग को चूक जाते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है कि आप किंचित चुके उसको किंचित नहीं कहा जाता, उसको पूरा चुके ऐसा कहा जाता है। मैंने आपको उस पक्षी की चीटी नहीं दिखी पर उसकी आंख ही दिखी है, तो आपको चीटी दिखी ही नहीं है, सब प्रतिशत आपको पंक्ति ही दिखा है। उस तरह से यहाँ पे कहते हैं अहम मय ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय इतना पूर्ण एवं सर्वोपरि होता है कि वह उसमें अपने को मिलाने का अवकाश नहीं पाती। श्रद्धा का श्रद्धेय इतना पूर्ण होता है, इतना सर्वोपरि होता है कि वह उसमें अपने को मिलाने का अवकाश नहीं पाती। माने जो अहम की जो पर्याय है, श्रद्धा की जो पर्याय है, वो ध्रुव के अंदर में अपने को मिला दे, उतनी जगह उस ध्रुव में होती नहीं है। वास्तव में पूर्ण में पूर्ण के अहम को मिलने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। पूर्ण में पूर्ण के अहम, भगवान आत्मा पूर्ण है, परिपूर्ण परमात्मा है, पर उसके अंदर में पूर्ण के अहम को मिलाया जाए ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कोई अवकाश नहीं है। और तो और सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और तो और लेकिन सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन को रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। पर्याय के एक कोने में भी पर्याय यदि खड़ी रह जाए तो वहां पर ध्रुव नहीं कोना होता। उसने अपना पूरा कोना मन शत प्रतिशत संपूर्णता समर्पणता ऐसी होती है जिसमें संपूर्ण समर्पणता हो, उसने अपना कोने कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। उस पर्याय के अंदर में ध्रुव नहीं बचता, मैं ध्रुव हूँ ऐसा बचता है। वो पर्याय पर्याय नहीं होती है, पर्याय पर्याय होते हुए भी पर्याय पर्याय नहीं होती है, वो ध्रुव होता है। पर्याय का ध्रुव नहीं होता, ध्रुव का ध्रुव होता है। जब तक पर्याय का ध्रुव है तब तक वो पर्याय ने अपना पूरा समर्पण पूरा पूरा नहीं किया। उस ध्रुव में अहम, अहम में ध्रुव श्रद्धा का हृदय नहीं होता। बहुत गंभीर विषय है लेकिन अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि अहम करना श्रद्धा का स्वभाव है। अहम माने मैं, अहम माने एकत्व। अब वो यदि अहम में ध्रुव हो तो पर्याय में ध्रुव हुआ, और पर्याय में ध्रुव श्रद्धा का हृदय कैसे बना? श्रद्धा का हृदय तो ध्रुव होता है, उसमें अहम की कोई जगह नहीं होती है। ये बात कहकर इसका इस बात का पूरा विश्लेषण इस 25वें पन्ने से शुरू हुआ इस लेख का समापन 50वें पेज से होगा। 25 प्रश्न का ये लेख है जिसके अंदर में प्रथम 4 प्रश्न गुरुदेव श्री को समर्पित है कि हमारे गुरुदेव कैसे थे, इस युग के महान और असाधारण व्यक्तित्व थे, सत्य से दूर जन्म लेकर स्वयं बुद्ध की तरह किस तरह से उसने सत्य को पाया, महावीर से लाए सिमंदर परमात्मा की वाणी का संस्कार साथ में लाकर यहाँ पे उन्हें गुरु नहीं मिला, फिर भी किस तरह से आत्मदर्शन कर लिया। गुरुदेव आज सुबह में हेमचंद भाई साहब ने भी कहा था कि गुरुदेव के परिवर्तन की परिस्थितियां क्या थी, यदि आज अपन सोच भी रहे तो कंपारी छूट जाए, रुआटे खड़े हो जाए कि इस पुरुष ने हमारे लिए सिंह की तरह सारा विश्व के सामने झुकना, और इनकी ज्ञान गर्जना ऐसी थी, इसकी गर्जना ऐसी थी कि महावीर शासन के ऊपर छाए हुए मुंह के बादल इसकी गर्जना से बिखर गए। सुधात्मा का जोर, भगवान आत्मा का जोर इसकी ज्ञान गर्जना में इतना था कि इसके सामने पाखंड खड़े नहीं रहता है, सारे के सारे जमीन दोस्त होंगे। और जब गुरुदेव श्री को यह कहा गया कि साहब आप समयसार वाचो, आप सुना पढ़ो और हम लोग सुनेंगे। तो गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि हमारे अंतर में कुछ और बाहर में कुछ नहीं हो सकता। 13 वर्ष तक तो गुरुदेव श्री ने सारे दिगंबर शास्त्रों का, आचार्य भगवंतों के मूल शास्त्रों का विहंगावलोकन जंगल में जा जाकर किया। जंगल चले, सुबह एक छाप लेकर मट्ठा लेकर चले जाते थे 8 बजे। जंगल के अंदर में कोई गड्ढा खोद लेते थे, उसके अंदर चले जाते थे और पूरा का पूरा दिन उस स्वाध्याय के अंदर में, चिंतन के अंदर में बिताते थे। राजकोट में परिवर्तन का प्रयत्न किया, अमरेली में किया, दामनगर में किया, उमराला में किया, लेकिन सब जगह से विरोधी विरोध हुआ। सब ये बात कही गई कि शायद सौराष्ट्र काठियावाड़ में खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं मिले। तो गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि मने खबर है, तमें कोई धर्म में सजा नहीं, आचार्य ससु मुझे कापड़ से मैं सजा छू, मुपति जो है मुपति के सगे हो, धर्म के कोई सगे नहीं हो। गांधी ने रोटला ना टुकड़ा माटे रिक्षा लीधी नहीं, એને પોતાના પુણ્ય ઉપર ભરોસો છે કે રોટલા તો ક્યાંય પણ મળી જશે, અને નહીં મળે તો જંગલમાં જઈને અમારું હિત કરશું। એસે જગતની પરવા કહે વિના સત્ય કે પ્રતપર જીસ તરફ એ પુરુષ આગે બળા, એ તાકાત ઉંચી જીવકે ઉનકે સાથ મેં ક્યાં નહીં ઘટા, લેકિન સબ કુછ ઘટતે હુએ કુછ ભી નહીં ઘટા। મને કહેને કા મતલબ યે હૈ કી જહાં જહાં ગુરુદેવ શ્રી કા विहार होता था, वहाँ पे काले भाव से लकड़िया पत्थर लोग लेके खड़े रहते थे कि आने से उसके ऊपर हमला किया जाए, लेकिन जहाँ गुजर वहाँ पे गुजरते थे लोग के हाथ से लकड़ी गिर जाती थी, पत्थर गिर जाते थे, वहाँ पे छोड़ देते थे और गुरुदेव के चरण में जाकर नतमस्तक होकर क्षमा चाहते थे। तो ऐसा ही पूरा जीवन के अंदर में गुरुदेव के साथ में एक गुरु पहले संप्रदाय के सामने जजुमा और फिर चिदम्बर समाज के सामने जजुमा, लेकिन सत्य का पथ सत्य का मार्ग कुन आचार्य भगवान के आमने को, उनके जिनागम को, उनकी जिनवाणी को मस्तिष्क से लगाकर बेधड़क ऐसा ही कहते थे, हम तो पागल में बैठे आप अलग करके हमको क्या कर लोगे। मैंने पश्चिम भारत के पश्चिम के एक कोना में छोटे से गांव में हम बैठे हुए हैं, आपको जो करना हो कर लो, हमको क्या, हम तो सत्य से अलग नहीं हो सकते, ना हम किसी से समन्वय कर सकते हैं, ना जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से अलग कर सकते हैं। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे प्रचंड पुरुष, ऐसे पवित्र पुरुष, ऐसे ज्ञान दर्शन चरित्र के धनी पुरुष अपने को मिले, जिन्होंने भगवान आत्मा की बात चरम सीमा पे अद्भुत से अद्भुत तरीके से, माने ऐसा कोई पहलू नहीं है जिनवाणी के अंदर में जिनका विवेचन उन्होंने नहीं किया हो, उनकी गहराई में जाकर, माने बात ऐसा लगता था कि अपने सुधात्मा के अंदर में जा जाके उनका अनुभव कर करके कोने कोने से आत्मा के आनंद गुणों का वैभव को जिस तरह से निकालते थे, सही में गुरुदेव श्री की ही ताकत है कि जिनवाणी का जिनागम का ये मर्म उन्होंने जिस तरह से प्रकाशित किया। सही में एक काम का पूछे, गुरुदेव श्री एक वैभव थे, गुरुदेव श्री एक अचंबा थे, गुरुदेव श्री और श्रुत की लब्धि थी, श्रुत का समुद्र था। जब जिनवाणी को लेकर बैठ जाते थे, श्रोताली शक्ति का वर्णन चले, अब आचार्य भगवान का मूलभूत वर्णन हो, 47 शक्ति 4 पन्ने में और गुरुदेव श्री उसके ऊपर वर्णन करे तो आत्मवैभव नाम का पूरा पुस्तक बन जाए। अरे किसकी ताकत अपनी अनंत शक्तियों से एक एक शक्ति को पकड़ के इतना खोलना, इतना समझाना, इतना विश्लेषण करना, और मैंने अंतर की गंभीरता पूर्वक अंतर में रमते हुए, अंतर में झूमते हुए भगवान आत्मा की बात करते करते ऐसा लगे कि बस अभी भगवान आत्मा से निकल कर ही बात करते हैं। ऐसे अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक पूज्य गुरुदेव श्री अपन को मिले, जिस जिस बात का विरोध उनको करना था उन्हें जो जिनागम से विरुद्ध बात थी उसमें खुले आम उसको चुनौती दी, सरकार कभी भी परवाह नहीं की और अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर अविराम करने निश्चिंत होकर, निश्चल होकर निर्भय पर चलते रहे। तो इसलिए बाबूजी का ये कहना था कि जिस समय भारत वसुधा पर पूज्य श्री कांजी स्वामी का अवतरण हुआ उस समय की अध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था किंतु उस चिंतन में अध्यात्म नहीं था। प्रश्न 27, अध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था किंतु उस चिंतन में अध्यात्म नहीं था। अध्यात्मिक चिंतन का यह स्वरूप हो चला था कि आत्मा को कहा तो सूझ जाता था किंतु वास्तव में माना सूझ जाता था, अथवा यदि शुद्ध भी माना भी जाता था तो आगम भाषा के दासत्व के कारण शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध माना जाता था और व्यवहार नहीं से अशुद्ध। अब आत्मा को आपने शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध कहा तो उसका मतलब यह कि व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है क्या? तो स्वभाव से शुद्ध है, तो शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध तो आगम के दासत्व के कारण माना जाता था। इस तरह श्रद्धा के लिए कोई धरती भी नहीं रह गई थी और दो नयों की चक्की में धान की तरह चिस्कर आत्मा की मट्टी पलित हो रही थी। बड़े से बड़े विचारक, महान प्रतिभाएं, त्याग और वैराग्य के आदर्श नई की इस सक्रियता में इस तरह मुक्त थे कि न तो उसमें से निकलने का उनका मन था और न सामने कोई रास्ता। स्वराज के इस संत ने जंगलों के निर्जनों में समय का एवं मोक्ष का प्रकाशक जैसे परमानंदों का गंभीर अवधारण कर इस आध्यात्मिक समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया। आत्मा की अनुभूति कितनी सरल है ये समाधान इस विश्व को पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया। तो यदि गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन का आविष्कारता कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक संचित सम्यक दर्शन की फैक्ट्री का संचालक है, जंगल में मंगल करने वाले थे, एक एक आत्मार्थियों के हृदय में पधार कर उनके अंतर के आंगन को पावन करने वाले थे। कुनकुन आचार्य भगवान का धोरी मार्ग उन्होंने पूरा प्रवाहित किया। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि गुरुदेव के समय में जैन शासन की स्थिति क्या थी कि समुद्र के मध्य बीच में यदि एक मनुष्य डूबता हो और यहाँ तक डूब गया हो, ऊपर से सिर्फ बाल सूख दिखाई देता हो और उस आदमी को यदि निकालना हो तो निकालने वाले में कितनी ताकत होनी चाहिए कि वो बाल को पकड़ के पूरा का पूरा आदमी को बाहर कर दे। जहाँ जैन दर्शन का नाम रह गया था, पुण्य को जहाँ पर धर्म कहा जाता हो, पाप का अधर्म कहा जाता हो, ये तो जैन शासन की परिस्थिति थी। और वहाँ से निकाल कर आत्मा के अनुभूति का मार्ग, मुक्त मार्ग को मूल मार्ग से लाना वो गुरुदेव श्री की ही ताकत थी। इस युग के वो ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने शायद 18,000 वर्ष के लिए जो प्रशस्त मार्ग को जिस तरह से स्पष्ट किया, आज किसी को घूम को देखने की जरूरत नहीं होगी। एक उनको आचार्य देव की जिनवाणी रहेगी, जिनागम रहेगा और दूसरी तरफ गुरुदेव श्री रहेंगे, उसको आत्मदर्शन नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अद्भुत से अद्भुत सौभाग्य हम सभी का हुआ कि गुरुदेव का प्रत्यक्ष समागम मिला, सानिध्य मिला और जिनको नहीं भी मिला उसको भी गुरुदेव मिले। वाणी के माध्यम से 9,300 प्रवचनों के माध्यम से आज गुरुदेव का जीवन जीवन बने सारे मनुष्य समाज के सामने, मोक्षार्थी समाज के सामने, आत्मार्थी समाज के सामने इस तरह से प्रस्तुत है किसको और कुछ सोचने की जरूरत। एक तरफ आचार्य भगवान और एक तरफ गुरुदेव, दूसरी तरफ अपना शुभात्मा। भगवान आत्मा की उपलब्धि न हो, प्राप्ति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी अपने दूसरे पौधे से वस्तु तत्व दर्शन का विषय प्रारंभ करें।